अच्छा होता है तो बहुत सी चीजें जहन में
जी वही बात है ना कि अगर अभी आपको इस चीज़ का नहीं भी पता, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप लोग खुद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि हकीकत में जो बात हमें कही जाती है उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर उसको माने, अगर आपके हाथ में कागज़ है, कलम है, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका जहन जो है वो उसके साथ फोकस रहता है, आप इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि आप महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त सुनते हुए भी कि मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का मामला करना है कि जो मेरे यानी मुहावजे में भी रहे और मैं उसको बाद में भी दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, और किसी की कोई फीलिंग, कोई बात? जी आप, हुज्जत मैंने दलील के हमारे खिलाफ या हमारे हक में, मसलन जैसे एक कोई चीज हमारे हक में हुज्जत है तो वो हमारी सिफारिश करेगी, और अगर वो हमारे खिलाफ है तो वो हमारे खिलाफ सिफारिश करेगी कि ये कैसे काम करते थे इस दुनिया में आकर। ठीक है जी, और कोई? आप लोग थे लास्ट टाइम? आप दोनों नहीं हुए?
नहीं, नहीं, नहीं।
जी जरूर, प्लीज। बिल्कुल, आप याद लिखने में याद हो जाएगा। बिल्कुल सच है, जितना ज्यादा लिखेंगे आप देखेंगे कि उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ना। तो चलिए आज इंशाल्लाह ताला हम अब थोड़ा सा उस आयत के एक हिस्से को लेकर फिर आगे चलेंगे, और उम्मीद है कि हम जो भी चीज़ सीखेंगे वो हम सभी के लिए एक इस तरह की चीज़ होगी कि जो हमारे साथ जाए यहाँ से आगे तक इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने पहली आयत देखी थी जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की चार खूबियों का तज़किरा था कि कुरान या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो बेशक आ गई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और वशिफाउ लिमा फिस सुदूर, और वो बीमारियों की शिफा है जो तुम्हारे सीनों में है। यानी कुरान जो है एक तरफ वास भी करता है, दिलों को नरम करता है, और उसके साथ ही साथ ये हमारे दिल के अंदर से कुफर की, निफाक की, दुनिया की मोहब्बत की, हसद की, और दिलों में कितने मनफी जज्बात दिलों में समाये होते हैं उनका इलाज करता है। बहुत सारे लोग इस वक्त इस चीज़ के लिए परेशान देखे गए हैं कि ताल्लुकात ठीक नहीं है, कोई किसी की बुराई करता है, कोई गीबत करता है, कोई लेग पुलिंग करता है, कितने मसले हैं। बल्कि वो लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा सोच के ये सोचते हैं कि ये बेनियाज है दूसरों से, करीब बैठ के देखें तो नेगेटिव जज्बे उनके भी दिलों में हैं। तो कुरान की ये खूबी क्या है कि ये हमारे दिलों से न सिर्फ ये कि अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में बदगुमानियाँ दूर कर देता है, क्योंकि जब बंदे को अल्लाह से बदगुमानी होती है ना तो इंसान अल्लाह से भी खुश नहीं होता, मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई, मेरी तकदीर ऐसी क्यों थी। और जो इंसान तकदीर पे राजी नहीं है वो असल में अल्लाह से बदगुमान है, मैं बीमार क्यों हूँ, मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरी बेटी क्यों है, इस तरह की बातें जो होती हैं। तो कुरान पढ़ने से इंसान को एक किस्म का सुकून आ जाता है, अपनी हस्ती का एहसास होता है और अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ इसमें वो खुदान हिदायत, हिदायत देखिए कि कुरान पाक को यहाँ हिदायत कहा गया, और हिदायत जो है हदीये से है, हदीया कहते हैं तोहफे को, गिफ्ट, गाइडेंस इज अ गिफ्ट। कैसे? दुनिया में आप देखिए कि अगर हमें कोई बंदा भी कुछ कोई चीज़ देता है तोहफे में तो हम उसकी कदर इस वजह से नहीं करते कि वो चीज़ क्या है, हम इस वजह से उसकी कदर करते हैं कि देने वाले ने हमें किस जज्बे से दिए। तो कुरान हिदायत है और अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, कुरान पाक एक तोहफा भी है, हिदायत है, और इसके अंदर अल्लाह सुबहान तआला ने हम सबको ज़िंदगी गुजारने की हिदायत भी दी है। और इसी को इंशाल्लाह भी आज हम सूरह फातिहा में इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा बात कर सकेंगे। लेकिन हुदन जब कुरान बन जाता है तो फिर हमें ज़्यादा लोगों से नहीं पूछना पड़ता। मोस्टली हम किससे पूछ रहे होते हैं? लोगों से। कैसे पूछते हैं? हमने तो नहीं पूछा, इस तरह पूछते हैं ये कह कर के लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या चलता है, आजकल क्या इन है, आजकल क्या फैशन है, आजकल क्या रिवाज है, आजकल क्या चल रहा है। ये जुमले कितना नासमझी में भी हम बोलते हैं ना, तो ये सब लोगों से हिदायत लेना है। एक ईमान वाले की ज़िंदगी का अपना स्टाइल होता है, वो अल्लाह की रहनुमाई में जीता है, इसी में खाता है, इसी में सोता है, और इसी के मुताबिक वो अल्लाह ताला से फैसले मांगता है। तो लिहाजा जब कुरान ज़िंदगी में आता है तो ना सिर्फ ये कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है बल्कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का रास्ता आसान हो जाता है। आपको छोटे छोटे काम हैं हर वक्त हैं, बच्चों से आपको काम है कि नहीं, है ना, कितनी बातें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी माने। अब बच्चे हम उनको कहेंगे तो वो माने ना माने, हमें कोई श्योरिटी नहीं है। अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह ताला आप इनके दिलों में ये बात डाल दें और ये इस काम को कर लें। अभी क्या पकाऊँ आज, क्या इसका भी फैसला करना है कि नहीं, अल्लाह आप गाइड कर दें आज क्या पकाऊँ। बाज़ दफ़ा हम ये सोच के पकाते हैं कि चलो आज घर में ही है, कुछ नहीं पकाते, बिलफर्ज मिसाल दे रही हूँ, और या कोई ऐसी चीज़ पकाते हैं जो हम अमूमन मेहमानों के आगे नहीं रखते। उसी दिन ऐन खाने के वक्त में वो मेहमान आ जाता है जो कभी भी नहीं आया, फिर हम कहते हैं हाय आज अगर मैं मुर्गी पका ली होती। तो खाना पकाने से पहले अगर आप एक दफ़ा कह दिया करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला क्या पकाऊँ इस दिन अस से रात, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, क्या पहनूं। आप गर्मी समझ के बाहर पतले कपड़े पहने, बाहर गए पता चला सर्दी है। ये आम जिंदगी की मिसालें हैं। तो हुदन का लफ्ज बहुत वसी है, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। फिर चौथी चीज देखिएगा, वह रहमा, वरहमतुल्लिल मोमिनीन, और रहमत है ईमान वालों के लिए। रहमत किसको कहते हैं? रहमत कहते हैं किसी चीज की खुशी को, यानी आपका दिल चाहे जिस चीज़ में आप खुश हों। मतलब मैं ये इसकी बड़ी लिटरल मीनिंग कर रही हूँ कि रहमत हमारे यहाँ कितना मारूफ है, फलां पे अल्लाह की रहमत हो गई, किसी का रिश्ता हो जाए तो कहते हैं रहमत हो गई, मंगनी हो गई रहमत हो गई, शादी के बाद रहमत हो तो मतलब है कि बच्चा होने वाला हो गया, बच्चा होने वाला था तब रहमत हो गई, ये मतलब ये कि डिलीवरी हो गई है, ऐसी बातें सोचते हैं ना। तो रहमत इतनी वसी चीज़ है कि आप ये कह लीजिए कि रहम से इसका ताल्लुक है, कि माँ के पेट में जहाँ बच्चा पलता है वो रहम है, यूट्रस को कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में रहम कहते हैं। तो रहमत अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा है। अब इन चार चीजों को जमा करें, मिलेंगी किनको? लिल मोमिनीन, ईमान के साथ इसका ताल्लुक है, हर एक को नहीं मिलेगा। मत सोचिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है, मानने वालों को मिलेगा। लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, हम कहते हैं ना मुस्लिम है, वी आर मुस्लिम, इस्लाम कबूल कर लिया, अब हम मान लिया, नहीं, लिल मोमिनीन ईमान। जैसे दवाई का भी तभी फायदा होता है ना जब उस पर यकीन होता है। कुरान आपको बेहतरीन गाइड बनेगा, आपके लिए रहमत बनेगा, आपके दिलों से मुगज़ निकालेगा, शर्त कह के आप पहले इस पर ईमान लाएं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदा लिल मुत्तकीन, पहली आयत में सूरह बकरा में कह दिया कि इसको शक से पाक दिल से सुनो। हम आधे दिल के साथ जब इस किताब को सुनते हैं ना तो अल्लाह को कहते हैं आधा भी तुम ले लो। आज अगर आप यहाँ आके बैठे हैं ना तो आज आपने पूरे दिल से सोचा था मैंने आना है। अगर आपने 100 में से 99% सोचा हो ना कि मैं जाऊंगी, सिर्फ 1% डाउट हो या सुस्ती हो या आपके दिल में ये ख्याल हो, देखते हैं, तो आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अल्लाह जैसे एक हल्के से जर्रे के शिर्क भी बर्दाश्त नहीं करता ना, अल्लाह की किताब भी नहीं बर्दाश्त करती। आपको नींद आ जानी थी, आप कहीं और चले जाते, कोई मेहमान आ जाएगा, बहाना बन जाएगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे। कुरान तब दिल की बहार बनता है जब 110% कन्विक्शन, मैंने करना है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरा सुकून है, ये मेरी खुशी है। अल्लाह रग़बत दिलाते हैं, कुल भी फ़ज़लिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह के फजल, व भी रहमती ही, और उसकी रहमत के साथ, फवी जाली का फल यफरहू, बस चाहिए कि खुशियां मनाओ। ये है असल सौदा। अगर आप देखिए इसमें दो चीजें, एक अल्लाह का फजल और एक अल्लाह की रहमत। अगर आप मस्जिद में आने और मस्जिद में से जाने की दुआ देखें तो मस्जिद में दाखिल होते हुए क्या दुआ की जाती है, अगर आपने कभी मस्जिद में जाके पढ़ा कि अल्लाहुम्मा अफ्तहली अबवाब रहमतिका, और जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। अंदर गए तो कहा रहमत देना, यानी ये ना कि मस्जिद से भी मैं कोई और ही बेकार बातें सोच के आ जाऊँ और वहाँ भी अंदेशों में हूँ और वहाँ भी कोई अल्लाह की मोहब्बत ना मिले। जैसे किसी के घर जाएँ और घर वाला ही ना मिले तो आपको क्या खुशी है। इसी तरह जब हम मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ से भी रूहानियत नहीं मिलती, वहाँ से भी अल्लाह का ताल्लुक नहीं मिलता, तो रहमत नहीं होती, बल्कि वहाँ भी झगड़े, इख्तलाफी बातें और झगड़ों की बातें होती हैं। लेकिन जब निकलता है इंसान तो कहता है कि अब मुझे अल्लाह तेरा फजल चाहिए, और अमूमन फजल जो होता है वो दुनियावी माल और मता है। मर्दों को कहा कि चलो जाओ रिस्क, अल्लाह का फजल ढूंढो, रिस्क कमाओ, कमाना रिस्क के हलाल जो है ये सब फजल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो मुसलमानों, तुम पे अल्लाह का फजल भी है और उसकी रहमत भी है। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि दुनिया भी अल्लाह नहीं देनी है और आखिरत भी उसने ही देनी है। सिंपल सी बात है, देखिए 100 बातों की एक बात है। आप दुनियावी मिसाल से इसको पहले समझ लें तो दीन की मिसाल बाद में समझ आएगी। माँ अपने बच्चे से खुश हो तो उसको ज्यादा देगी या नाराज होगी तो ज्यादा देगी? खुश होगी तो देगी ना। जिनसे हम खुश होते हैं हमारा उनको देने को दिल चाहता है। मासियों को देख लें, ड्राइवरों को देख लें, कोई बंदा आपको खुश कर दे फिर आप कहते हैं मैं तो इसको अपने मुंह का लुकमा भी दे दूं, नाराज करके ले भी ले, बच्चा जिद करके ले ही ले, तो माँ यूं फेंकेगी और कहेगी ले लो लेके मेरे से बात ना करो, ये बात तो क्लियर है ना, इसको ले लीजिए अल्लाह पे। लेना किससे? अल्लाह ने, कोई दे सकता है? اللهم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کوئی دے نہیں سکتا جب تو نہ دینا چاہے، اور کوئی لے نہیں سکتا جب تو میرا میرے لیے فیصلہ کرے۔ کسی دولت مال عزت والے کو اس کی یہ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تو نہ چاہے۔ تو جب اللہ سے ملنا ہے تو اللہ کو خوش کریں گے تو زیادہ ملے گا کہ ناراض کریں گے تو ملے گا؟ آج ہم رونے روتے ہیں اپنی کمیوں کے، اپنی بیماریوں کے، اپنے دکھوں کے، اپنے غموں کے، اللہ کو خوش کرنے کی طرف نہیں آتے۔ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کے موقع ہوتے ہیں۔ بالفرض مثال دیتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا گھر نہیں دیا اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا گھر بہت بڑا ہو، مثال ہے، چھوٹی سی ایسی عام عورتوں کی مثال ہوتی ہے، ان کو بڑا گھر بہت اچھا لگتا ہے، وہ کہتی ہیں ہمارا 4 کنال کا گھر اور یہ وہ ہے، نہیں دیا اللہ نے بالفرض۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 4 کنال کا اگر آپ کا گھر ہوتا تو آپ کو تو شاید کھانا بھی کھانے کی فرصت ملتی کہ نہ ملتی؟ چلے 10 نوکر بھی ہو جاتے تو ان کو 10 نوکروں کو دیکھنا بھی تو ایک کام ہو جائے گا نا۔ تو اللہ نے چھوٹا گھر دے کے آپ کی مصروفیت کم کر دی۔ آپ اس وقت کو جو آپ نے ادھر کی چیزیں ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہونا تھا، تھکنا تھا، آپ اللہ کے راستے میں تھک لے۔ بعض دفعہ بچے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بچہ نہیں، بچہ نہیں، بچہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیمپر بدلنے ہیں نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا دودھ صاف کرنا ہے نا، پیار کرنا ہے، آپ کسی کے بچے کو کر لے۔ مثال ہے، آپ اس وقت کو جو آپ کو اللہ نے کم دیا آپ اس کو اللہ کے راستے میں لگا کے اللہ کو راضی کر لے۔ بعض دفعہ شوہر کی طرف سے یہ مسائل ہوتے ہیں، طلاق ہو گئی، بعض دفعہ ایسے معاملے آتے ہیں، بعض لڑکیاں ان کی شادی نہیں ہوتی، بڑی عمر ہوگی، لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ ہر وقت غم، شادی شادی، شوہر شادی، بھائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر شوہر پاس ہوتا اس کے کتنے تقاضے تھے، شادی ہوتی، سسرال ہوتا، کتنے کام تھے، تم اس وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں ماشاءاللہ کہ جب وہ کلاسز میں آتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا سمجھ آتی ہے کہ وہ خیر مما یجمعون، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اس ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہمارا دقت ہم جلدی جلدی گھر کے کام ختم کر کے اپنے اور بس پڑھنے پہ بیٹھیں اور سیکھیں، اور جو محبت کے ایک ٹھکانے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری ہیں، کبھی ایک آ جاتا ہے ڈسٹریکشن، کبھی دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ موقع ڈھونڈتی ہیں کہ سارے گھر والے کہیں جائیں مل کے کھانے، چائے، آئس کریم کھانے جائیں، اور ہم پیچھے سے بیٹھ کے سوچیں۔ تو بھئی اگر اللہ نے وقت دیا تو کیا شکر ہے اللہ کا۔ پھر ایسے موقعوں پہ اگر انسان صرف غم کے مارے بیٹھا رہے اور کوئی نیکی کا کام آگے نہ کر سکے، اور خشوع سے عبادت کرے، اور نماز میں وقت ہو، اور تو عبادت ہو، یعنی کتنے طریقے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا ٹاپک قرآن ہے تو قرآن سے بہتر دوست کوئی نہیں۔ اسی کو کہا گیا اللہ کے نبی اس کی بڑی پیاری دعائیں کہ انت جل القرآن العظیم ربی یا قلبی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اس سے پیاری بہار آپ کے دل کو کوئی نہیں دے گا۔ دیکھیے بہار بھی تو کتنے مہینے رہتی ہے، سب سے تھوڑا وقت ہوتا ہے بہار کا، شاید میرا لے 1-2 مہینے کے اندر ہی بہار پھر گرمی میں بدل جاتی ہے نا، لیکن قرآن آپ کو جو بہار دے گا نا یہ ایور لاسٹنگ ہوگا، جس کو آپ کہیں سدا بہار۔ ایک دفعہ اگر یہ قرآن آپ کے دل میں سما گیا، اللہ کی محبت آ گئی، نہ آپ کبھی تنہا ہوں گے، نہ کبھی دکھی ہوں گے، نہ پریشان، نہ بیمار۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ امام ابن تیمیہ بہت بڑے امام گزرے اپنے دور کے، لیکن یاد رکھیے کہ جو لوگ دین کے لیے، حق کے لیے قربانیاں دیتے ہیں نا، اپنے دور کے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، ان کو لوگوں نے قیدوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، تو اس وقت کے حکمران کے نے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو جب یہ جیل میں گئے تو کہا کرتے تھے میری جنت تو میرے ساتھ ہے، ڈال دو مجھے جیل میں، میری جنت میرے دل میں ہے۔ اور وہ وہاں اس قید خانے میں دین کا اتنا کام کر گئے کہ آج ہم آزاد لوگ نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے شکر ہے ہمیں قید میں رکھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھا، تاجر تھے، بہت بڑی دولت تھی ان کی، بڑی یعنی بہت مصروف انسان تھے، لیکن دل اللہ کی طرف اٹکا رہتا تھا۔ لیکن ایک ایک کر کے آزمائش آئی، مال چلا گیا، بچے مر گئے، گھر بار ختم ہو گیا، تنہا ہو گئے، تو کیا کہتے تھے کہ اللہ کل جب سب کچھ میرے پاس تھا، تو جانتا ہے کہ میرا دل اس وقت بھی تیرے میں اٹکا رہتا تھا، لیکن لوگ مجھے تیری طرف آنے نہیں دیتے تھے، اتنے مجھے کام تھے، آج تو یہ سب کچھ لے کے تو نے مجھ پہ احسان کیا کہ اب میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یہ انت جل القرآن العظیم ربی یا قلبی، اصل ٹھنڈک اس میں ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ نہیں ہے، रुकैया नहीं है, मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज है। जुइलत कुर्रतु आइनी बिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। आप नमाज के लिए इस तरह भाग भाग के जाते थे जैसे लोग अपनी बेटियों को देख के खुश होते हैं, उधर भागते हैं। तरजीहात बदलने की जरूरत है। एक बड़ी प्यारी दुआ है समझता हूँ दुआ में, जिसमें आपने कहा कि अल्लाह जब लोगों की आंखें दुनिया की चीज़ों से ठंडी होंगी ना, उस वक्त तो मेरी आंखें अपनी इबादत से ठंडी कर दे, मुझे वो दो नफिल नसीब हो जाए जिससे मेरा तेरे साथ कुर्ब हो जाए। असल खुशी तो वो देगा क्योंकि उसके पास खजाने हैं, गैरों से क्या मिलेगा। तो यहाँ हम इस चीज़ पे सोचते हैं कि सारी जिंदगी मुमन देखिए कि लोग क्या जमा करते हैं। वह खैर मिम यजमान, कपड़े, जेवर, जूतियाँ, बर्तन, और औरतें क्या जमा करती हैं आप भी बता दें, बेडशीट्स, और जवानी होती है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी लगती है, कार्ड अच्छे लगते हैं, कोई स्टैम्प्स जमा करता है, कोई तितलियां जमा करता है, कोई सूखे फूल जमा करता है। किधर गई खुशी? मिलती है खुशी इन चीज़ों से? हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, जो चीज़ आप अपने लिए जमा करेंगे इस कुरान में से, ये दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। तो ये हमारा, हमारे दिल के अंदर ये तलब होनी चाहिए। चार दिन की जिंदगी गुजर गई, पता नहीं कितनी है। वो कहते हैं ना कि चार मांग के लाए थे जिंदगी, पता नहीं कितने दिन, चार दिन लाए थे, दो निकल गए आरजू में और इंतजार में गुजर गए, चली गई। अपनी जिंदगी पीछे देखें, आज से 10 साल पीछे जाएं, आप किधर थे जी? उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में गुजर गए, दो इंतजार में। तो फिर जाना तो कब्र में ही है ना, आप वो सोचें अंधेरा कब्र में। हदीस में आता है कि कब्र अंधेरी होगी और जब ईमान वाला वहां जाएगा तो उसके पास रोशनी आएगी, बड़ी खूबसूरत सी रोशनी होगी, और एक किरदार की शक्ल में, एक बड़े खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा। तो उसको देखेगा तुम कौन हो, फिर अल्लाह ताला उसको कहेंगे, वो कहेगा कि मैं तुम्हारा कुरान हूँ। कहीं बाज़ रिवायत में सिर्फ मुल्क का नाम आता है, बाज़ रिवायत में कुरान की दूसरी सूरतों का नाम आता है। वो कहेंगे कि दुनिया में तुम्हें मेरे से बहुत प्यार था ना, तुम मुझे रातों को पढ़ते थे, तुम्हें, तुम्हारा दिल मेरे साथ लगा हुआ था, तो अल्लाह ने मुझे भेजा कि कब्र की इस तन्हाई में तुम्हारा साथ दूँ। हर एक को खौफ आता है ना तन्हाई से, और कब्र में जब बंदे को दोस्त मिल जाए और वो भी मनपसंद दोस्त, तो फिर वो कब्र इंसान की कितनी खूबसूरत होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हकीकत में इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, और इस तरीके से हमें इससे फ़ायदा लेने वाला बना दे कि हम इसके अंदर इस तरह से डूब जाएँ कि जो चीज़ वाकई हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत कर दे। वरना आप देखिए, हम बाज़ दफ़ा इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि जो बातों की हद तक तो बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं लेकिन उसमें अमल नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कुरान को हम हकीकत में अपने दिल की बाहर बनाएं। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देखिएगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कुरान को इंसान अपने लिए कैसा बनाए, क्योंकि कुरान तो आज हमारे पास सबके पास है। मेरे और आपके में से कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं कुरान को नहीं समझती, लेकिन कुरान को बनाना क्या, ये थोड़ा सा इसमें इसका डिस्टॉर्ट हो रहा है कि क्या मैंने कुरान को हिदायत की किताब बनाया, असल ये सवाल है। बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, सवाब के लिए भी हम पढ़ते हैं, जिन्नों भूतों के लिए भी पढ़ते हैं, हम इस किताब को बेटियों के रिश्तों के लिए भी पढ़ते हैं, शादी के ऊपर मौके में शादी सर के ऊपर भी रखते हैं, लेकिन ये सवाल खुद से करें कि क्या मैंने कुरान को किताब हिदायत बनाए, बुक ऑफ गाइडेंस, जैसे पीछे हमने बात की कि किताब हिदायत ही होगी तो ऐसी है। फिर इसमें क्या है ना, ऐसे लोग कम हैं जो कुरान को रोजाना पढ़ते हों, इनसे भी कम वो हैं जिसको समझ कर पढ़ते हों, मगर बहुत ही कम ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कुरान को मरकजी जगह हासिल हो। सच है ना, पहले दौर में सुबह उठ के एक रुकू पढ़ने की आदत थी, नानियाँ दादियाँ वो गई तो सुबह की आवाज़ ही चली गई कुरान की। आज भी जिस घर में कोई बुजुर्ग है वहाँ आप देखेंगे फजर से पहले या बाद में कुरान की और तहज्जुद की आपको आवाज़ आएगी। आज के यंग तो फ़र्ज़ भी पढ़ के सो जाएं तो बड़ा एहसान जताते हैं जी कि पढ़ ली थी नमाज, आज वो कहाँ गया। आप आज से 10 साल बाद सोचिए, इस जनरेशन की अगली को सोचिए। चलिए आप सब अपने आप के ऊपर ले, अगर आप माशाल्लाह अभी भी पढ़ती हैं, लेकिन अगर आपकी यंग बच्चियां नहीं पढ़ती ये कुरान का तरीका सुबह से, जब ये बच्चियां अपने घरों में जाएंगी और 10-15 साल के बाद ये भी माँ बन चुकी होंगी और इनके घरों में बच्चे होंगे, क्या आपकी बच्चियों के घरों में इसी तरह कुरान होगा? क्या आपकी नवासियों के घरों में ऐसे ही कुरान होगा? हम कितनी तेजी से इस कुरान से बदल रहे और हमारी जिंदगी में इसकी जगह बहुत थोड़ी रह गई। यानी वो पढ़ते हैं और समझते भी हैं मगर कुरान से इनका बराह रास्त और शख्सी ताल्लुक नहीं बना। वो इस कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, वो कुरान को अपने महबूब मुफस्सरीन के हवाले से समझते हैं या उस आतिजा से, यानी कुरान खुद समझ सकते हैं। सादा कुरान अगर हमारे सामने आ जाए तो क्या हम समझ लेंगे? अगर कुरान मेरे लिए हिदायत की किताब है तो मेरा इसके साथ शख्सी और बराह रास्त ताल्लुक होना चाहिए, पूरे इखलास और इनकसारी के साथ। ये पूछिए, कभी अकेली बैठी हो तो कभी दिल करता है, जैसे मिसाल छोटी सी दूं कि आप बैठे हैं बोर हो रहे हैं, कभी क्या दिल चाहता है? कोई दोस्त पास हो, माँ हो, दोस्त हो, बहन हो, इस तरह सोचते हैं। या आपका दिल चाहता है कभी मेरा कुरान मेरे पास होता ना तो उसको मैं खोलती, ऐसे खोल के देखा करें, जैसे छोटे पेजेस होते ना इधर से पढ़ लें। जब आप सादा कुरान समझ के पढ़ेंगे ना तो आप फील करेंगे कि उसके नतीजे में आपको ऐसे लगेगा मैंने अपनी दोस्त से बातें की हैं, तन्हाई नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी तो शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर अगला सवाल है कि क्या कुरान सिर्फ बरकत की किताब है? बरकत अपने महदूद और वसी मानों में कि जहां भी बरकत और रहमत का जिक्र है कुरान के नाते से, वहां हिदायत का भी जिक्र है। यानी कुरान के लिए कुरान पाक में कहीं सिर्फ बरकत के लफ्ज नहीं आए बल्कि ज्यादा हुदल लिन्नास, हुदल लिल्मुत्तकीन। तो हिदायत क्या है? अल्लाह ताला सूरह स्वात में भी कहते हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि ये वो किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप इसकी आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें और इससे नसीहत तो अकल वाले लेंगे। आज कितने कम हैं ऐसे लोग जो इससे नसीहत ले रहे हो। फिर आप देखिए कि किसी चीज़ का जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो असल में उसकी असल होती है। मसलन अगर आप ग्राइंडर मशीन लाते हैं तो बीच में उसके एक बुकलेट में उसकी पूरी लिखी होती है ना कि ये ग्राइंड करता है, ये इतने में चलता है, इसको पानी नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो उसका इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल जब हम कुरान खोलते हैं तो हमें कुरान का इंट्रोडक्शन क्या आता है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिलमुत्तकीन। असल लफ्ज़ हुदन पे गौर कीजिए, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, गाइडेंस है बकरा में। फिर इसी तरह आप कुरान में बहुत सारे इसके रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं कि इसको गाइडेंस बनाएं। आज जाके ये सोचना है कि क्या मैंने किताब को गाइडेंस बनाया। अगला सवाल यह है कि क्यों हिदायत किताब को बनाएं, यानी कुरान को हिदायत की किताब क्यों बनाएं, तो हिदायत की अहमियत और इसका मतलब क्या है? आप देखिए कि हर रोज हम 5 नमाजों में कितनी रकतें पढ़ते हैं? तकरीबन 17 दफा फर्ज में हम सूरत अल फातिहा में कहते हैं इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। उसमें से भी अगर आप करिए ना तो फर्ज फजर के दो फर्जों में, जोहर और असर में नहीं, मगरिब के शुरू के 2 फर्ज और ईशा के शुरू के 2 फर्ज, 6 फर्जों में ऊंची किरत होती है। मर्द मस्जिदों में जाते हैं तो उनको पता है, घर में आप भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, जमात से जब नमाज पढ़ी जाती है ना तो पूरे दिन में 6 रकतें ऐसी हैं जिसमें सूरत अल फातिहा के बाद हम कुरान का कुछ हिस्सा ऊंची पढ़ते हैं, जहरी नमाज कहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों किताब को समझने की जरूरत है, क्यों कुरान को बुक ऑफ गाइडेंस बनाना है कि मैं दिन में कम अज कम 6 बार कभी सूरत 3 पढ़ती हूँ, कभी मैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ती हूँ, कभी सूरत बैशीना पढ़ी, कभी अल्लाह नूरु समावात पढ़ी। समझ नहीं आ रहा, ये तो एक एमरजेंसी कंडीशन नहीं है? 17 बार दिन में सूरत अल फातिहा हम पढ़ें, अभी हम करेंगे उसका इंशाल्लाह खुलासा, तो आप देखेंगे कि जिस सूरत को हम दिन में 17 बार सिर्फ फर्जों में, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें भी हैं, नफिल भी हैं, फिर आप बाज़ दफ़ा आमतौर पर भी पढ़ लेते हैं कभी आपका दिल चाहता है, और मुझे समझ ही नहीं आ रही, मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम जिनका गजब नहीं हुआ और ना भटके हुए लोग। लेकिन अमली जिंदगी में जब कोई कहता है आओ ले लो हिदायत तो हमें डर लगता है, कहते रहते हैं हिदायत दे हिदायत दे, जब अल्लाह कहता है आओ ले लो तो कहते हैं नहीं नहीं जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, बेहिदायत ही ठीक है, फिर जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, फिर छोड़ो छोड़ो क्या फायदा। तो हिदायत का मतलब सिर्फ मुसलमान हो जाना है तो फिर रोजाना हम ये दुआ क्यों मांगते हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हम हैं, तो लिहाजा इस किताब को किताबे हिदायत बनाना होता है। फिर इसके बाद हिदायत के कई दर्जे होते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला जब हम सूरत अल फातिहा करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें सारी फायदा देंगी, अभी इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। आप देखिए कि जब हम कहते हैं ना इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो सीधा रास्ता दिखाने के अंदर कई मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। मसलन आप देखिए कि जैसे सिंपल एक रास्ता के अल्लाह मुझे गाइड कर, अल्लाह गाइड मी, बिल्कुल मैं आपको सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि जैसे हम में से किसी को यहाँ अगर आज फर्स्ट टाइम हम आए हैं और हमें हॉस्पिटल जाना है तो आपसे कोई कहता है कि क्या यहाँ हॉस्पिटल है, तो आप में से कोई ऐसा जो यहाँ मौजूद है वो कहेगा हाँ है, इधर से निकले, इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े, फिर सीधा जाके फिर आप एक राइट लेंगे तो आपको साइड पे ब्लू और येलो कलर की एक बिल्डिंग दिखेगी, वो है हॉस्पिटल। एक दर्जा ये है, यहाँ बैठे बैठे आपने बता दिया। आप हम कहते हैं अच्छा जी शुक्रिया, हम जाते हैं ठोकरे खाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, मिल भी जाएगा नहीं मिलेगा। एक तो ये है रास्ता दिखा देना, आपने यहाँ बैठे बैठे बता दिया। एक दूसरा हो सकता है आप में से ऐसा हो कि नहीं पता नहीं ये कहाँ भटकेंगे, आप कहते इधर आए चले आए बाहर, फिर आप मुझे बाहर ले जाकर वहां से दिखाएंगे यूं मुड़े वो देखे दिख लिए उस तरफ मुड़ता है, आपने थोड़ी सी मुझे सड़क दिखा दी। ये आपकी मोहब्बत है कि चले भाई मैं आपको और ज्यादा करीब करके दिखा दूं। तीसरा कोई आप में से कैसा भी बैठा हो सकता है वो कहता है नहीं चले बैठे मेरे साथ मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ के आती हूँ। ये तीन दर्जे बड़े से बड़े मैंने मुख्तसिर समेटे हैं। जब हम कहते हैं ना इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला को हम ये अगर हमें अभी रास्ता ही नहीं पता, लॉस्ट पीपल है, पता ही नहीं गुना सवाब जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी गुजर रही है खुदा फरमोशी की, तो उस वक्त हम अल्लाह से पहला दर्जा मांग रहे होते हैं कि अल्लाह प्लीज शो अस द पाथ, कि सही रास्ता है क्या। अब कुछ लोग हैं हम में से जो बोन मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज रोजा हज पता है, दीन का तरीका तो पता है ना, तो जब हम कहते हैं दीन सिरात अल मुस्तकीम तो उस वक्त हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह सब पता है लेकिन तौफीक तो दे अब चले, पता है पांच नमाजें लाजमी है, इसके बगैर इस्लाम खत्म हो जाएगा, अल्लाह दिल को ठुकवा इधर। हम उस वक्त ये मांग रहे होते हैं, आप समझिए ना, शुरू में कुछ नहीं था, नमाजी की बात ले लें या दीन की या जो भी अपनी इज्जत की हिफाजत की, पहले पता ही कोई नहीं था, लॉस्ट थे बिल्कुल खोए हुए थे, मांगी अल्लाह ने दिखा दिया, कुरान खोल लिया पढ़ लो। अब जब जरा पढ़ने लगे चलने लगे तो अब हम दूसरे दर्जे पे आ गए, अब दूसरे दर्जे पे आके फिर भी कह रहे हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, तो क्या मतलब है कि अल्लाह आज दिखा दिया है, अब तूने हमें उस पर चला भी दिया, तो अब ये ना कि आज तो चल रहे हैं लेकिन कल चलना छोड़ दें, इस्तकामत का दर्जा होता है वो, समझ रहे हैं ना। और एक बंदा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसाल उनकी ले लीजिए सहाबा के लिए, क्या वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं कहते थे, कहते थे ना, तो क्या उनको रास्ता नहीं पता था, पता था। वो हिदायत के कौन से दर्जे पे थे, आखिरी पे, कि अल्लाह हिदायत देख भी ली है, चल भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तकामत भी है, लेकिन मौत तक इस पे कायम रखना कि अल्लाह मुझे मौला तमोतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो हर बंदे का एक दर्जा होता है, हम में से किसी को भी इससे मफर नहीं कि बस अब हिदायत की जरूरत नहीं, सब तो पता है। आज कई लोग सिर्फ ये सोच के किताब की तरफ नहीं आते शौरी तौर पे कि सब पता है, कुछ तो खौफजदा है कि पता लग गया तो अमल करना पड़ेगा, और कुछ इस गलत फहमी में, और हम करें तो क्या करें। फिर आप देखिए कि हिदायत इंतहाई कीमती चीज है, जिसको आप कहिए कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। आप सोचे ना अगर आपके पास घर में क्या एक्सपेंसिव चीज है, मोस्टली घरों में सोना चांदी कोई जेवर कोई गोल्ड एक डायमंड पैसे डॉलर्स ये कीमती है ना, हम उनको कहाँ रखते हैं छुपा छुपा के, खुद नहीं इस्तेमाल करते, वो बैंकों में ही रखे रहती हैं चीज़ें, पैसा अपना नहीं है, कागज़ के नोट या कार्ड लेके फिरते रहते हैं, नोट सारे बैंकों को दिए होते हैं। अब क्योंकि हमें उसकी अहमियत का पता है ना, क्या हम अपने किसी गोल्ड के सेट को घर के बाहर गेट के पास रखते हैं डब्बे के में खुला डाल के रख देते हैं, हम तो पहन के नहीं बैठ जाते, डरते हैं कहते हैं उतार के चले जाओ ऐसे ही उतार लेगा चूड़ियाँ, कीमत का एहसास है ना। अब लाइए जरा एक तरफ अपने गोल्ड डायमंड में, उसके ऑपोजिट लाइए अपनी हिदायत को, क्या हम उसका भी इतना खौफ खाते हैं, क्या हर लम्हे मुझे इस चीज का फिक्र लगा रहता है कि हाय मेरी हिदायत मेरा शौहर ना ले ले, ऐसी शौहर को गलत मुतालबा कर दे मैं उसके पीछे लग के अपनी हिदायत का सेट खो दूं, मेरा बच्चे मुझसे गलत मुतालबा मनवा कर मेरी हिदायत ना खोले, ये मेरा ससुराल ये मेरे रिश्तेदार ये मेरा खानदान ये फुला, देखो शादी आ रही है एक खानदान में बड़ी करीबी और बड़े लोगों की शादी है और बहुत उसमें ऊट पटांग होगा, अल्लाह कैसे ऐसा ना हो कि मैं अपनी हिदायत का सारा जेवर वहीं बेच के आ जाऊं, नहीं एहसास होता, हम तो खुशी खुशी ऐसे कामों को करते हैं, हिदायत बहुत कीमती है। इसी तरह हिदायत कुरान है, तो बाकी चीजों को देखें, आप देखिए कि अगर हम अपने गोल्ड के सेट को बाहर खुले हम नहीं छोड़ते तो हमारी कीमती औलाद उसको खुले हम बाहर कैसे छोड़ सकते हैं जबकि उनको दीन की समझ नहीं दी हुई, हमारे बेटे बाहर हैं और उनको नहीं समझाया हुआ कि गुना सवाब क्या है तो हमारे खौफ नहीं आता कि उनकी हिदायत चली जाए, हमारी बेटियां सोने चांदी से करोड़ हा गुना कीमती बच्चियां जब वो बाहर खुली फिरेंगी तो क्या हमें उस वक्त खौफ नहीं आएगा कि अल्लाह इन ये चोरी ना हो जाए, है ना। तो तरजीहात बदल जाती हैं इस तरह से, तो इंसान जब इस तरह की चीज़ों को करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक भी दे देता है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हिदायत बढ़े। आज जहाँ खड़े हैं ना कल की फिक्र करें, कल जहाँ जाएंगे, परसों, परसों जाएंगे उससे अगला दिन, फिर उससे अगला दिन, और इसी तरह आखिरी दिन तक मौत आ जाए। ये जो हमारे यहाँ अमूमन एक दुआ की जाती है ना कि अल्लाह कलमा देना मौत पे, मौत के वक्त कलमा नसीब कराना, ये आप ये भी समझ लीजिए, ये कोई अचानक फैसला नहीं होगा कि आप शॉपिंग मॉल में खड़ी थी और बुटीक में खड़ी थी और चारों तरफ मर्द थे और आप झूम रही थी, इतने में मौत आई और आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी नहीं ऐसा होगा। जब जिंदगी कलमे के तकाजों पे होगी ना, तो मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। और इमाम इब्ने तैमिया का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, कहते कि ईमान वाले के दिल में सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, क्योंकि वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वही बात जो हमने पीछे भी की थी ना कि हर चीज में अल्लाह की जात, प्यार अल्लाह से, डर उसका, खौफ उसका, लॉर्ड उसका, तन्हाई में उसका, अकेले में, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह उसके दिल में होता है। मौत के वक्त में मलकुल मौत को देखकर खौफ की वजह से वो कलेमा उसकी जुबान पे आ जाता है। आपने देखा होगा घर में खुदा ना खासा चोर डाकू आ जाए तो सच बोलता बंदा, फिर वो वहां रखा है ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मुझे छोड़ दो। खौफ में बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तो मौत की सख्ती में इंसान खौफजदा होता है, तो जो दिल में होता है वो आ जाता है। और जिसके दिल में ये होता है कि अल्लाह माफ कर दे, किसी की बात आपने भी सुनी होगी कि बहुत मारूफ सिंगर था और उसने कहा जब मैं मरने लगूं तो मेरी धुनें चला देना, मैं अपनी धुनें सुनते हुए मरना चाहता हूँ। जो दिल में वही आपकी मौत के ऊपर होगा। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी हिदायत वाली हो और मौत भी हिदायत वाली हो, फिर अच्छी होगी। जो जिंदगी इस तरह की होगी जिसके अंदर हमें फिक्र होगा, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। ये याद रखिए, ये अल्लाह का फैसला। अगर आप जो काम जिंदगी में ज्यादा कर रहे हैं ना, उम्मीद रखिए कि उसी पे मौत आएगी। मिसाल है कि अगर एक शख्स है ट्रेवलिंग बहुत करता है, मे भी चांसेस है कि ट्रेवलिंग में उसकी जान चली जाए। एक शख्स रोजे बहुत रखता है, तवक्को ज्यादा यही होगी ना कि जिस दिन वो मौत आएगी शायद उस दिन भी उसका रोजा हो, राइट? ऐसे ही है ना। या एक बंदा जो है वो मिसाल है कि गाने बहुत सुनता है, चांस है कि गाना सुनते हुए मौत आ जाएगी। तो जो काम आप चाहते हैं ना कि हमारी मौत के वक्त हो, वो दुनिया में भी कीजिए। और वही बेहतरीन बात है कि अल्लाह ताला तो हमारे लिए इस किताब को हकीकत में हिदायत की किताब बना दे, फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ मिलेगा। और जब किताब से हिदायत मिलती है ना, फिर जिंदगी गुजारने की हिदायत मिलती है। आप ये मत सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया कि बस तुम मेरी बात मानो और किसी को न मानो। आप देखिए कि अगर आपके सामने एक पिक्चर है, बीच में आप अपना नाम लिख लें, ये देखिए ईमान वाला बीच में होता है। असल जो चीज़ है ना, प्रायोरिटाइज करना है। ये देखिए अल्लाह की जात सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर अल्लाह की जात होती है। इसको आप याद नहीं कर सकते या आप इसको नीचे नहीं कर सकते, सबसे ऊपर अल्लाह का हक। फिर आप पलट के आके देखिए माँ बाप, रिश्तेदार, यतीम मिस्कीन, हमसाए, साथी, मुसाफिर, फिर शहर के लोग, मुल्क के लोग, फिर आखिर में गैर मुस्लिम। यानी एक बंदा इन सारे रिश्तों में लिपटा होता है। और यही है हिदायत। किताब हमें ये सब सिखाती है। मत को ये खौफ करे कि अल्लाह सिर्फ हमें अपना ही बना के पता नहीं हमारी जिंदगी रुसवा कर देगा, कभी नहीं हो सकता। आखिरत की जन्नत मिलने से पहले दुनिया जन्नत बनेगी। ये बहुत बड़ा हमारे कल्चर में एक धोखा है कि अच्छा जी दीन पे आएंगे, चलो ठीक है आखिरत बन जाएगी। मतलब ये है कि दुनिया तो अब इनकी गई, मार दो, खत्म हो गई, ये मौलवी बन गया, ये मुल्ला बन गए, दर्स वाले बन गए, इनकी जिंदगी में अब क्या चाम है? कोई पूछ के तो देखे क्या चाम है। सच्ची खुशी तो दीन के बाद मिलती है। आप देखिए कि आप अपने रिश्तों को इंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपके पास दीन नहीं है। आज क्या नहीं है, दौलत वाली औरतों को देखिए, रो रही हैं। शौहर इतने शहर के मारूफ शख्स हैं, बीवी आंसू बहाती हैं, उनका किरदार ठीक नहीं है। घर में खाना इतना खा नहीं सकते, दुनिया की चीजें खुशी नहीं देती। अल्लाह की जात, अल्लाह का दीन बंदे को जो खुशियां देता है वो है असल में जिंदगी। और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कोई बात आप जो ये मैंने सिर्फ एक गो थ्रू करा है आपके साथ, कोई बात कहना चाहें इसमें से शेयर कीजिए। आप क्या सोच रहे थे, आप दोनों में से कोई आगे से ऐसे ही अपनी बातें करें, हम कोई मुश्किल बातें तो कर भी नहीं रहे। क्या लगा आपको कि आपको इससे फायदा हुआ कुछ? क्या सोचेगी इसके बाद आप, मतलब अपने लिए कोई बात अपने अमल के लिए सोची? देखिए आपने मांगा तो अल्लाह ने आपको रखा। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूँ मैंने आपके घर आना है तो आपके मैंने नहीं आने देना। मैं कहूँ अच्छा आप बताइए आपके घर आऊँ रास्ता दिखाए, तो आप कहते नहीं नहीं मैंने नहीं आने देना, कोई हम में से कोई एक भी ऐसा बद अखलाक है, हम कहते नहीं जी जरूर आइए जरूर आइए, तो अल्लाह कैसे कहेगा कि ना आओ। तो इसलिए इंशाल्लाह हमने ख्वाहिश रखनी है। तो इस पे ये तो हमने थोड़ा सा पिछले को रिकैप मैंने सोचा कि आपको करवा दूं साथ ही साथ। अब आज हमारा जो असल सबक है सूरत अल फातिह, इसको खोल लेते हैं। थके तो नहीं आप लोग? मिलके जरा सब पढ़ें सूरत अल फातिह को, यानी सीखने के अंदाज में। असल में आज हमारा नेट इधर कोई प्रॉब्लम हो गया, हम तिलावत प्ले कर नहीं पा रहे, लेकिन आप नूरी ना पढ़ाएं सबको, आप एक एक आयत सब मिलके जैसे पढ़ते हैं के टीचिंग के स्टाइल में आप लोग तो पढ़िए, और इसके बाद इंशाल्लाह इसकी हम मुख्तसर सी वजाहत करेंगे।
आप लोग भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान।